الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورۃ النمل کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرفة القرآن کی جلد نمبر 6 سے اور اس کے اندر ہم ان آیات پر تھے جن کی تلاوت کی گئی آیت نمبر 20 سے لے کر کے 28 تک پوری کی ہم نے تلاوت نہیں کری لیکن ہم نے الی آخر کہہ کر کے یہی مراد دی. تو ان آیات کا خلاصہ تفسیر اور ترجمہ پڑھ چکے تھے معروف مسائل چل رہے تھے جن میں ہم نے پیج نمبر 573 تک پڑھ کے مکمل کیا تھا جس میں حضرت بلکہ جس میں ملکہ سبا کے تخت کا تذکرہ تھا. ولہا ٹھیک ہے, ہا کی ضمیر ملکہ سبا کو پوائنٹ کرتی ہے تو اس کے لیے تھا ایک عظیم عرش, عرش عظیم ٹھیک ہے. تو اس میں اس کے عرش کی ذرا شان بیان کری تھی کہ کتنا لمبا چوڑا اور اونچا اس کا عرش تھا ٹھیک ہے. آج صبح خواتین کی کلاس کے اندر سورہ حج کے اندر نا نہیں آج نہیں وہ سورہ حج میں نہیں بلکہ سورہ آراف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا. تو سورہ آراف کی تفسیر کسی اور کلاس کے اندر چل رہی ہے تو وہاں پر فرعون کے دربار کا تذکرہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ عصا ڈالا نا فرعون کے دربار میں تو وہ ازدہا جو بنا تو اس ازدہے کی ایسی دہشت پھیلی, ثعبان بنا ازدہا, ایسی دہشت پھیلی کہ فرعون جو تھا وہ اپنے کرسی سے اتر کر کے, جو بھی اس کا تخت تھا کرسی تھی تو اس کے اوپر سے اتر کر کے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے پیچھے چھپ گیا ٹھیک ہے کہ یہ تمہارا ازدہا ہے تم ہی مجھے بچا سکتے ہو اس سے. وہ تو پیچھے جا کے چھپ گیا اور اس میں لکھا ہوا یہ ہے, یعنی معرف القرآن ہی میں جو تفسیر سورہ اعراف کی ہے ان آیات کی اس میں لکھا ہے کہ اس کی دہشت سے دربار کے ہزاروں لوگ تو مر گئے, ہزاروں لوگ تو مر گئے دہشت سے ٹھیک ہے. کیا مطلب, اسے کیا پتا چلتا ہے کہ جو فرعون کا دربار لگتا تھا نا وہ بھی اتنا بڑا دربار لگتا تھا کہ اس کے اندر ہزاروں لوگ جو ہے وہ وٹنس ہوتے تھے, دیکھتے تھے اس دربار کو ٹھیک ہے. تو سوچیں کہ وہ بھی کتنا بڑا اس کا کوئی عرش ہوگا اس کا بھی, اور اس کا بھی جو ہے نا وہ پویلین ٹائپ کا ہوگا جس کے اندر اتنے سارے اسپیکٹیٹرز بیٹھے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہوں گے. تو جب دیکھ رہے تھے جبھی تو پھر دہشت اتنی طاری ہوئی کہ ہزاروں لوگ مر گئے ہے نا. تو اس زمانے میں یعنی آج ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی چیزیں بن گئی ہیں جی, اسکائی اسکریپرز بنا رہی ہیں. وہ اسکائی اسکریپرز بھی کیسی ہوتی ہیں, نیڈل کی طرح کی ہوتی ہیں, پن رائٹ, نیڈل جیسی, بس ذرا اونچی کرتے جا رہے ہیں, اونچی کرتے جا رہے ہیں. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی بس ہم نے ہی بنائی ہیں چیزیں, ہمارے ہی دور کے اندر بڑی بڑی چیزیں بنی ہیں ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی کہتی پتلی دبلی اور ایسی ایسی عجیب و غریب قسمیں بنتی ہیں. لیکن اس طرح کی جو بڑی بڑی کنسٹرکشن ہے نا, جیسے احرام مصر ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دیا ہے ٹھیک ہے, جو کہ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے عجیب و غریب قسم کے بڑے بڑے پتھر سے مل کر کے انہوں نے بنایا ہے. تو اور بھی کنسٹرکشن ایسی ہوتی ہیں سائز میں بہت عظیم و شان ہوا کرتی تھیں. تو ان میں سے یہ ملکہ سبا کا عرش بھی جو ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے, اور سلیمان علیہ السلام کا عرش وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا تھا, کیونکہ وہ جو عرش تھا نا وہ یعنی جس کے اوپر سلیمان علیہ السلام کا دربار سجتا تھا تو اس میں تو یعنی اسی ایک عرش کے اوپر جانور بھی ہوتے تھے, یعنی انسان جن جانور, اور اس کے اوپر جو ہے پرندے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہوتے تھے, اور یہ عرش جو تھا نا وہ ہوا میں اڑتا تھا ٹھیک ہے, ہوا اس کو اڑاتی تھی اور بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچایا کرتی تھی ٹھیک ہے. تو اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ پہلے بھی بہت کچھ کر چکی ہے, تو اور آج جو ہے نا وہ آج ہم خامخواہ بہت ڈر جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کو بڑا بڑا دیکھ کر کے. ایسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو اس سے پہلے بھی اس سورما گزرے ہیں. تو آگے پڑھتے ہیں کہ فرمایا وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس, ٹھیک ہے, کہ میں نے پایا, یہ ہدہد بول رہا تھا نا, کہ میں نے پایا اس کو, ملکہ سبا کو اور اس کی قوم کو اس حال میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو. معلوم ہوا کہ اس کی قوم نجوم پرست تھی, آفتاب کی عبادت کرتی تھی. عجیب ہے, نجوم پرست. نجوم کس کو کہتے ہیں؟ نجم کی جمع ہے ستارہ, ٹھیک ہے. تو سورج جو ہے نا وہ ایک ستارہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آج خالی پتہ نہیں لگی کہ سورج ایک ون آف دا سٹارز ہے یہ, ٹھیک ہے, بلکہ پہلے بھی اس کو سٹارز میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو ان کی قوم جو تھی وہ نجوم پرست تھی, تو ایک ستارہ یعنی سورج کو وہ اس کی پرستش کرتی تھی. بعض نے فرمایا کہ وہ مجوس میں سے تھی, ٹھیک ہے, مجوسی فائر ورشپرز کو وہ کہتے ہیں, جو آگ اور ہر روشنی کی پرستش کرتے ہیں. تو چونکہ سورج کے اندر سے بھی جو ہے وہ روشنی نکلتی ہے, تو انہوں نے کسی بھی طریقے سے یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ سورج میں سے جو روشنی ہے نا وہ بھی آگ سے ہی پیدا ہوتی ہے جو کہ سورج کے اندر ہے. تو اس وجہ سے وہ سورج کی پرستش کرتے تھے آگ کی وجہ سے, اس لیے نہیں کہ وہ نجوم پرست تھے بلکہ وہ یعنی آگ پرست تھے. آج کل ہمارے یہاں جو پارسی لوگ کہلاتے ہیں وہ بھی آگ پرست ہوتے ہیں. اللہ یسجدو کا تعلق زین لہم الشیطان یا صدہم عن السبیل سے ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس نے جو کہا نا کہ اللہ یسجدو, ٹھیک ہے, کہ وہ نہیں سجدہ کرتے. یہ آیت کیا تھی کہ وہ نہیں سجدہ کرتے للہ, اللہ کو, الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض, کہ جس نے کہ آسمان اور زمین کے اندر کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالا ہے, ویعلم ما تخفون وما تعلنون, اور جو کہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی, تم جن چیزوں کو چھپاتے ان کو بھی جانتا ہے اور جن چیزوں کو ظاہر کرتے ان کو بھی جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو اس نے کہا نا, تو یا اس نے کہا یا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت جو ہے وہ اپنی طرف سے انسرٹ کری, جو بھی ہے, لیکن آگے جو اس نے کہا نا کہ یہ کیا کہتے ہیں زین لہم الشیطان, بلکہ اس سے پچھلی والی آیت میں جو ہدہد نے کہا تھا کہ شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دیے ان کے لیے, یا صدہم عن السبیل, کہ شیطان نے ان کو جو ہے وہ سیدھے راستے سے روک لیا, ٹھیک ہے. تو یہ اس نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ یعنی شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہی بٹھا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کریں, یا یہ کہ ان کو حق کے راستے سے اس طرح روک دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کریں, ٹھیک ہے. یعنی شیطان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی غلط فہمی انسانوں کے دماغوں میں ڈال کر کے نا ان کو پھر سیدھے راستے سے روک دیتا ہے, ٹھیک ہے. شیطان کا تو یہ کام ہے, ٹھیک ہے, دس از ہز جاب, یہ اس کی جاب ہے, یہ اس کا جاب رول ہے, یہ اس کا ٹاسک ہے نا. وہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر کے یہ رول جو ہے وہ اپنا پلے کر رہا ہے نا, ہی از ڈوئنگ ہز جاب, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو رحمان کا جو سسٹم بنایا, یعنی نبیوں کا اور نبیوں کے جو 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 ورثا کا جو سسٹم بنایا, تو وہ سسٹم بھی کام کر رہا ہوتا ہے. وہ کیا کام کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کو پیش کر رہا ہوتا ہے, شیطان کے دھوکوں سے جو ہے نا وہ لوگوں کو بچانے کا کام کر رہا ہوتا ہے, وہ اصل بات کو پیش کرنے کا کام کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے جو انسان شیطان سے جڑ کر کے اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور رحمان کے بندوں سے جڑ کے اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہے نا, وہاں سے دور ہٹتا ہے, وہاں سے کتراتا ہے, وہاں سے جو ہے وہ یعنی وہاں جا کر کے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ان کی سنے, ان کی مانے, ان سے سیکھے, الٹا جو ہے وہ انہی کے اوپر چڑھ جاتا ہے, آپ نے یہ کیوں کر دیا, آپ یہ کیوں نہیں کرتے, اور آپ کی وجہ سے ایسا ہو گیا اور آپ کی وجہ سے ویسا ہو گیا, ہے نا. تو علماء مشائخ کے پاس جا کر کے سننے کی بجائے الٹا ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب شیطان تو اپنا کام کر رہے نا بھائی, رائٹ, شیطان تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, وہ صدہم عن السبیل والا کام کرے چلا جا رہا ہے, زین لہم والا کام کرے چلا جا رہا ہے. تو اب ایسے شخص کو حقیقت کون بتائے گا پھر, رائٹ. حقیقت تو اس کے سامنے لوگ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ خود ہی نہیں سننا چاہتا, تو قصور کس کا ہے؟ قصور اس کا اپنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم میں سے جو بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں, چاہے وہ برے عقائد کا شکار ہو جائیں, چاہے جو ہے وہ برے اعمال کا شکار ہو جائیں, اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ہم نے خیر کے راستے کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے اور شر کا راستہ تو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کو تو ہم چھوڑنے کے لیے ہم نے کوئی اسباب ہی نہیں کیے, کوئی ہم نے کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا کہ ہم شر کے راستے سے جو ہے وہ بچ سکیں. ٹھیک ہے, تو سمپل پیور میتھمیٹکس بھی اس کو نہیں کہیں گے, پیور کیا بولیں اس کو, یعنی بہت ہی سمپل قسم کی سائنس ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس بات کو اگر ہم مانیں تو پھر ہماری آگے کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تحریر اور خط بھی عام معاملات میں حجت شرعیہ ہے. اب حضرت نے یہاں پر تھوڑی سی فقہی یعنی باتیں لکھی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ ساری کہانی جب حدود سے سنی تو اس کو حکم دیا اذهب بکتابی هذا, میرے اس لیٹر کو لے کر کے تم جاؤ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام خط بھیجنے کو اس پر اتمام حجت کے لیے کافی سمجھا. اتمام حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے, حجت تمام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں نے اپنا کام کر دیا, میں نے میسج پہنچا دیا. اب میسج پہنچانے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو ضروری نہیں سمجھا کہ خود جا کر کے میسج پہنچائیں, یا یہ کہ اپنا کوئی باقاعدہ کوئی بڑا سا جن بھیجیں, ہے نا, جو کہ پراپرلی ریپرزینٹ کرتا ہو سلیمان علیہ السلام کو, رائٹ, کوئی سینئر موسٹ پرسن کو بھیجیں اپنے دربار میں سے. نہ انسان کو بھیجا, نہ جن کو بھیجا, بلکہ ایک ہدہد کے ہاتھوں صرف ایک لیٹر لکھ کر کے بھیج دی. ٹھیک ہے, تو یہی جو ہے نا وہ کافی ہو گیا پیغام پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب ہم جو ہے نا وہ اس بات سے یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے ہمیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی تحریر بھی آ جاتی ہے نا, چاہے وہ کوئی ای میل ہو, چاہے وہ کوئی واٹس ایپ ہو, کہ جس کے اندر ہمیں برائی سے روکنے کے لیے کچھ لکھا ہوا ہے, رائٹ, کوئی پیغام لکھا ہوا ہے برائی سے روکنے کا, یا کوئی اچھائی والا کوئی میسج لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے اوپر حجت بن جاتا ہے, وہ ہمارے اوپر حجت بن جاتا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ابو جہل کے پاس تو اللہ کے نبی آئے تھے تو میرے پاس کیوں نہیں آئے اللہ کے نبی, رائٹ, اللہ کے نبی آئیں گے تب میں ان کی بات مانوں گا نا, میرے پاس تو کچھ آیا ہی نہیں ابھی تک, میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ابھی تک, ہے نا. تو اس بات سے ہم قیامت کے دن نہیں بچ سکیں گے, کیونکہ ایک واٹس ایپ میسج, ایک تحریر یا کوئی ایک جملہ, کوئی ایک بیان, رائٹ, کوئی ایک کلاس, کچھ بھی اللہ تعالی نے ہم تک پہنچا دیا, وہ ہم پر حجت بن گیا. ٹھیک ہے نا, کہ میسج واز ڈیلیورڈ ٹو یو. اسی وجہ سے لوگ بہت سارے جو ہے نا وہ جن کو کہ ظاہر ہے وہ تعلیمی نظام بھی سارا کا سارا کافر کا بنایا ہوا, اسی سے جو ہے وہ ذہن سازی ہو کر کے پلے بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یا یہ کہ جنہوں نے اس تعلیمی نظام سے پلا بڑا جو بڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے ہماری ذہن سازی کری ہوئی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو نا ہم پھر خام خواہ کے نا پھر اعتراضات کرتے ہیں, اور وہ کیسے ہوتے ہیں کہ وہ آسٹریلیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک بڑھیا رہتی ہے, اگر وہ جو ہے مسلمان نہیں ہوئی تو اس کا کیا قصور ہے, اس کے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا, رائٹ, اس قسم کے سوال کرتے ہیں نا بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا, تو بہت سارے لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں, اس کا کیا قصور, اس کا کیا قصور, اس کا کیا قصور, نبی تو ان کے پاس نہیں آیا, ان کے پاس تو کوئی مولوی صاحب بھی نہیں گئے, ان کے پاس کوئی شیخ صاحب بھی نہیں گئے, تو اس کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ بھائی ہم نے کو تھوڑی جہنم میں ڈالنا ہے کسی کو, رائٹ, ہمارا کام ہے کسی کو جنت میں ڈالنا, کسی کو جہنم میں ڈالنا, یہ کام کس کا ہے, یہ کام تو اللہ کا ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو بھائی اللہ جس طرح میسج اس تک پہنچا دیتے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا, ہم کوئی اس کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کوئی اس کے کانوں کے پاس بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں, دروازے کا بھی کچھ پتہ ہے, آپ دروازے میں بھی جا کے بیٹھ جائیں, پھر بھی کسی اور طریقے سے میسج اس تک پہنچ سکتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے, رائٹ. تو کان کے اوپر جا کر کے بیٹھیں یا اس کی عقل کے اندر جا کر کے بیٹھیں, تب شاید آپ کو پتا چلے کہ اس تک کیا کیا چیزیں پہنچی ہیں, کیا کیا چیزیں نہیں پہنچی ہیں, رائٹ. ہمیں کیا پتا کہ کس کے پاس اللہ نے کیسے میسج ڈیلیور کروا کر کے اس کے اوپر حجت تمام کر دی ہے, رائٹ. تو اس قسم کی فضولیات بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اصل میں ہم صرف بہانے بازی کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ, نہ ماننے کی بہانے بازیاں. ٹھیک ہے نا, کہ ہم نے خود نہیں ماننا ہوتا نا, ہم اس قسم کی مین میخ نکالتے ہیں دین والوں کی باتوں کے اوپر. ٹھیک ہے, جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جو ایمان لے کر کے آئے گا نا وہ جنت میں جائے گا, اور جو ایمان نہیں لے کر کے آئے گا وہ جہنم میں جائے گا, یہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں خالی, ہے نا, وہ کسی کو پکڑ کے جہنم میں پھینک تو نہیں رہے ہوتے, مولوی صاحب, شیخ صاحب या इवन रसूल साहब, रसूल साहब भी किसी को पकड़ के जहन्नुम में तो नहीं डाल रहे होते, ये काम तो अल्लाह ताला का है। रसूल ने तो खाली मैसेज डिलीवर करना होता है ना, बात समझानी होती है, मैसेज डिलीवर करना होता है। वो जब करते हैं ना ये मैसेज डिलीवर, तो हम जो है ना, चूंकि हमें बात सुननी नहीं होती, हमें बात माननी नहीं होती, हम उल्टी सीधी आगे से है ना वो पख निकालते हैं उसके अंदर, मीन मीख निकालते हैं उसके अंदर, ये कैसे और वो कैसे और ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं, उसको क्या हो गया, वो क्यों, वो तो इतना नाइस गाय है, वो इतने अच्छे लोग हैं, वो तो झूठ नहीं बोलते हैं, वो तो वादे की, अरे तुम्हें क्या पता वो झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तुमसे पूछ के बोलते हैं वो झूठ कोई, राइट। हजरत आप जरा इजाजत दें तो हम झूठ बोलें, आपसे किसी ने पूछा है कि वो झूठ, वो यानी कब उन्होंने झूठ बोलना, कब उन्होंने झूठ नहीं बोलना, तो खामखा की इस तरह की बातों का कोई फायदा नहीं है। कहने का मकसद ये है कि हुज्जत अल्लाह ताला पहले पूरी करते हैं उसके बाद सजा देते हैं, और ये अल्लाह ही का काम है, ये किसी बंदे का काम नहीं है, ठीक है। तो एक लेटर भिजवा देना, दिस डज इतमाम हुज्जत, है ना, हुज्जत की तकमील एक लेटर के जरिए से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कर दी उसके ऊपर, ठीक है। तो फरमाया कि हुज्जत के लिए काफी समझा और उसी पर अमल फरमाया, ठीक है। इससे मालूम हुआ कि आम मामलात में तहरीर व खत काबिल एतबार सबूत है, आम मामलात। इस तरह आम मामलात से यहाँ पे कौन से वाले मामलात, दावत और तबलीग का मामला, ठीक है ना, दावत और तबलीग मैसेज डिलीवर करने वाला मामला, इसको आम मामलात से तशबीह दी, ठीक है, कि तहरीर और खत काबिल एतबार सबूत है, भाई हमने आपको दावत दे दी थी, ठीक है। फुकहा रहिमहुमुल्लाह ने सिर्फ उन मौके में खत को काफी नहीं समझा जहां शहादत शरईया की जरूरत है, शहादत शरईया, शरई शहादत जिस जो टर्म है वो किन जगहों के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, वो इंसानों के आपस के मामलात, ठीक है, जिनको मुआमलात कहा जाता है, राइट, इंसानों के आपस के, यानी बेशरा शरा वगैरह, ठीक है। तो फरमाया कि क्योंकि खत और टेलीफोन वगैरह या ये कि बेशरा भी हर जगह इसमें नहीं, लेकिन निकाह, ठीक है, और क्या कहते हैं, यानी अदालत के अंदर जो फैसले किए जाते हैं, सही है। तो फरमाते हैं कि क्योंकि खत और टेलीफोन वगैरह के जरिए शहादत नहीं ली जा सकती, इस किस्म की शहादत जो है ना वो खत और टेलीफोन वगैरह के जरिए से नहीं ली जा सकती। शहादत का मदार शाहिद का अदालत के सामने आकर बयान देने पर रखा गया है, ठीक है, कि भाई उसने लिख करके दे दिया तो इट्स नॉट इनफ, सही है, अदालत के सामने आकर के, फिजिकली सामने आकर के बयान दो, ठीक है। तो अब वो काजी साहब जो है वो फिजिकली विटनेस करेंगे तुम्हें और फिर उसके बाद फिर फैसला करेंगे। तो फरमाते हैं कि शहादत का मदार शाहिद का अदालत के सामने, यानी जिसने विटनेस किया है शाहिद, ठीक है, तो वो सामने आकर के बयान देगा जिसमें बड़ी हिकमतें मुजमर हैं। यही वजह है कि आजकल भी दुनिया की किसी अदालत में खत और टेलीफोन पर शहादत देने को काफी नहीं समझा जाता, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो यानी ये मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर लिखी है, कब लिखी है, आज से कोई 50-60 साल पहले, ठीक है, तो गालबन 1960s में लिखी होगी, 1970s में, बल्कि अगर हम बिल्कुल सूरह नमल का आखिरी पेज देखें तो उसके अंदर ईयर भी लिखा हुआ होगा, तो देख लेते हैं सूरह नमल का आखिरी सफा तफसीर का लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह नमल की तफसीर आज शब दोशंबा 24 शवाल 1391 में हुई, ठीक है। 1391 कोई बता सकता है जल्दी से कैलकुलेट करके, या इवन वेबसाइट के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं हिजरी डेट्स को ग्रेगोरियन डेट्स में। खैर, आज जो है वो क्या है, 1444 चल रहा है ना, तो 44 ईयर्स ये हो गए, और उसके अंदर जो है वो आप 10 साल और मिला लें तो 54 ईयर्स पहले, माशाल्लाह तुक्का सही लगा था, 54 ईयर्स पहले ये तफसीर लिखी, ठीक है। तो उस वक्त जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सब मौजूद ही नहीं थी, ठीक है ना। आज भी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, अगरचे कि आपको ये बात पता है कि दरमियान में जो इंटरनेट है ना, तो इंटरनेट तो फिर एंटर द नेट है, ठीक है, उसके अंदर तो फिर बहुत कुछ किया जा सकता है, यानी ऐसे ऐसे टूल्स, ऐसे ऐसे ऐप्स अवेलेबल हैं सकती है, जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या बनाया जा सकता है। तो इस वक्त जो है वो मुफ्ती हजरात जो है वो आजकल के हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह को किस हद तक अलाउ करते हैं ये मुझे पता नहीं है, मैंने इसकी तहकीक नहीं करी, जिन्होंने किया है वो बता सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि उस जमाने में तो वीडियो वाला मामला था नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि खत खाली लिख करके अपना बता देना, तो आज के दौर में इसका एक अल्टरनेटिव क्या निकाला गया है, वो है पावर ऑफ अटर्नी, जिसको अरबी में जो है वो वकाला कहते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो जो बनवाया जाता है, पावर ऑफ अटर्नी वाला जो कागज बनवाया जाता है, तो वो कागज भी जो है ना वो फिजिकल विटनेस के जरिए से बनवाया जाता है, जिसको वो और क्या नोटराइज करना भी कहते हैं बाहर के मुल्कों में, अमेरिका यूरोप वगैरह में उसको नोटराइज करना कहते हैं। और हमारे यहाँ जो है पावर ऑफ अटर्नी जो है वो कैसे बनवाया जाता है कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर, एक सर्टन ग्रेड से ऊपर का गवर्नमेंट ऑफिसर हो, उसके सामने जाकर के बंदा यानी फिजिकली वहां पे मौजूद हो और उसके सामने जो है वो स्टैंप लगाए, साइन करे और वो अपना स्टैंप लगाए उसके ऊपर, ठीक है। फिर उस डॉक्यूमेंट की इतनी वैल्यू होती है कि उसको जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। यानी फिजिकल विटनेस इसके अंदर भी मौजूद है, पावर ऑफ अटर्नी के अंदर भी, ठीक है। तो बहरहाल ये चीजें उन्होंने लिख दी इसके अंदर, एक एक, एक फिक्री मसला यहाँ पे इसको लिख दिया। मुशरिकीन को खत लिखना और उनके पास भेजना जायज है, अगला इन्होंने अनुमान बांधा। तो फरमाते हैं कि दूसरा मसला जो सुलेमान अलैहि सलाम के इस खत से ये साबित हुआ कि तबलीग दीन और दावत इस्लाम के लिए मुशरिकीन और कुफार को खतूत लिखना जायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुख्तलिफ कुफार को खतूत भेजना अहादीस सहीहा से साबित है, ठीक है। तो तकरीबन 100 लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स को जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखे थे, कैसर, किसरा और तो ये सुलेमान अलैहि सलाम का अमल है। तो इससे शरी दलील पकड़ी, क्यों शरी दलील पकड़ी, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने आकर के सुलेमान अलैहि सलाम के इन अमलों को मनसूख नहीं किया, ठीक है, कि भाई अब ये पुरानी शरीयत में ये चीज जायज थी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यूसुफ अलैहि सलाम, यूसुफ अलैहि सलाम के वाकये के अंदर सबने सजदा किया यूसुफ अलैहि सलाम को, ठीक है ना, और कुरान मजीद में उस सजदे का जिक्र है यूसुफ अलैहि सलाम को सजदा करने का, ठीक है। लेकिन अब उस पैगंबराना फेल के अपने आप को सजदा करने की इजाजत दी गई, पैगंबराना फेल था ना, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में उसको मनसूख कर दिया, ठीक है। तो जब मनसूख हो गया अब उससे आप शरी दलील नहीं पकड़ सकते, ठीक है, कि ये हमारे लिए भी जायज है, नहीं। तो यहां पर जो चीजें हैं ये नबी अलैहिस्सलाम ने मनसूख नहीं करी, बल्कि काफिरों को लेटर लिखने का अमल तो आप ने खुद भी फरमाया, ठीक है ना। तो और भी ज्यादा वो यानी इस्टेब्लिश हो गया। वो इंसानी अखलाक की रियायत हर मजलिस में चाहिए, चाहे अगरचे वो मजलिस कुफार ही की हो, अगरचे वो मजलिस कुफार ही की हो। तो फरमाते हैं कि फालतह इलैहिम सुम्मा तवल्ला अनहु, यानी सुलेमान अलैहि सलाम ने बाकायदा हुदहुद को ये यानी गाइडेंस गाइडलाइंस दी कि तुम उसके सामने जाकर के डाल देना, उनके सामने है, यानी या तो वो औरत को जमा के सीगे के साथ बोल रहे हैं कि उनके सामने जा, या उनके दरबार में जा करके डाल देना, और फिर उसके बाद जो है ना वो पीछे हट करके खड़े हो जाना, ठीक है। तो सुलेमान अलैहि सलाम ने हुदहुद से नामा बरी का काम लिया। नामा बरी का मतलब मैसेज ट्रांसमिशन, ठीक है। तो उसको ये अदब मजलिस भी सिखाया कि खत मलकाए सबा को पहुंचा कर वही सर पर सवार ना रहे, उधर ही मत खड़े रहना, बल्कि वहां से जरा हट जाए, जो आम शाही मजलिसों का तरीका है, ठीक है। तो अब उस मजलिस के आदाब का जो है वो इस हद तक, जिसके अंदर कोई ऐसी खिलाफ शरा बात, कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी, तो उस अदब का लिहाज करना जो है सुलेमान अलैहि सलाम ने हुदहुद को समझाया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर किसी बादशाह की मजलिस के अंदर जो है वो उसको सजदा करना वहां की शाही आदाब में शामिल है, तो अब जो है वो हमारे मंदूब साहब को जाकर के वहां पे सजदा करना चाहिए, क्योंकि व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, राइट, जब आप रोम के अंदर हो तो जैसा रोमन्स करते हैं वैसे हमें भी करना चाहिए। नहीं, जो चीज हमारी शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, वो नहीं कर सकते किसी के दरबार के आदाब की खातिर, या किसी को जो है वो खुश करने की खातिर, किसी के दिल को मायल करने की खातिर, यहाँ भी मुसलमान बन जाएगा, अगर हम उनके जैसे थोड़ा सा कुछ हरकतें कर लेंगे ना तो उनका दिल नरम पड़ जाएगा, फिर वो हमारे दीन की तरफ आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो शरीयत जो है वो गालिब रहेगी हर मामले के अंदर। लेकिन पीछे हट करके खड़े हो जाना, ये कोई ऐसा खिलाफ शरीयत अमल नहीं, बल्कि ये तो अच्छे आदाब के अंदर ही शामिल है। तो इसका हुक्म बाकायदा हुदहुद को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिया। ठीक है, तो हमें भी इस तरह के जो आदाब हैं जो कि हमारी शरीयत और सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ नहीं जाते हैं, तो उन आदाब का हमें भी ख्याल करना चाहिए जिस कभी किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो, दूसरे कल्चर के लोगों के साथ। लेकिन अगर कोई चीज हमारे दीन के खिलाफ है तो उससे हमें परहेज ही करना है। इसमें आदाब मुआशरत और इंसानी इखलाक का आम मखलूकात के साथ मतलूब होना मालूम हो, यानी इट इज डिजायर्ड कि आम लोगों के साथ भी आप आदाब मुआशरत वगैरह जो है उसका ख्याल रखें। ठीक है जी, तो कोई सवाल वगैरह सीखे जाएंगे। जिसको भी अगर कोई सवाल हो तो लिख करके पूछिएगा। बाकी आगे की आयत हम इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم। साथ साथ तर्जुमा भी पढ़ते जाते हैं, तो क्लास के दरमियान में हमारी यही तरतीब रहती है। तो अल्लाह ताला ने आगे इस किस्से को मजीद चलाया, फरमाया कि उसने कहा, उस औरत ने, कालत, ठीक है, अगर मर्द होता तो काला इस्तेमाल होता, तो कालत उसने कहा, या अय्युहल मलऊ, ए मेरे, ए सरदारों, मलऊ सरदारों को या दरबार वाले, दरबार के अंदर जो है वो जो सामने के फ्रंट में वो सरदार लोग ही बैठे होते हैं। इन्नी उल्किया इलैया, बेशक मेरे पास लाके डाला गया है, किताबुन करीमुन, एक बड़ा इज्जत वाला खत। ठीक है, किताब मकतूब के मानी में होता है, मकतूब मतलब समथिंग दैट इज रिटन। ठीक है, तो उसके लिए असल लफ्ज तो है मकतूब, लेकिन अरबी जुबान में इस्तेमाल जो है ना वो किताब का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है लिखी हुई चीज के लिए। जैसे रसूल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, द वन हु वाज सेंट विद ए मैसेज। असल वर्ड जो है ग्रामर के हिसाब से वो है मरसूल। ठीक है, लेकिन इस्तेमाल क्या होता है, रसूल। ठीक है, तो इसी तरीके से मकतूब की बजाय किताब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ लैंग्वेज के मुहावरात होते हैं कि जो कि लैंग्वेज को ज्यादा अच्छी तरीके से जानने वाले लोग फिर हमें बताते हैं कि भाई इस किताब के अंदर, यानी खाली ग्रामर पढ़ के आपको लैंग्वेज का इस्तेमाल समझ में नहीं आएगा, बल्कि साथ साथ आप उसको, आपको अदब भी पढ़ना पड़ेगा उसका। ठीक है, जब भी हमारे मदारिस के अंदर जब अरबी जुबान पढ़ाई जाती है ना, तो सिर्फ कॉन्जुगेशन और ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, यानी सर्फ और नहव नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि सर्फ नहव के साथ साथ अरबी अदब भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उससे फिर आपको इस्तेमाल भी अल्फाज का समझ में आ जाता है। तो फिर इसने कहा, इन्नहु मिन सुलेमान, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है, वह इन्नहु, और बेशक वो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो कि रहमान है और जो कि रहीम है। यही वो आयत है कि जिसकी बुनियाद पर मुफस्सरीन और फुकहा वगैरह इन सब के जो जमात है, उलमाए कराम की जमात, तो उनमें जो है ना वो ये फिर एक इल्मी इख्तिलाफ है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ये यानी बाकायदा एक कुरान मजीद की आयत के तौर पे इसको कंसिडर किया जाए। ठीक है, या ये कि बस सूरत के शुरू होने से पहले के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये एक अलग बहस है पूरी, जो आप शुरू में तफसीर के शुरू में बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो पूरे कुरान मजीद के अंदर जो है ना, ये सूरत के अंदर जो है वो यहीं पर इस्तेमाल हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नहु के साथ। फिर मजीद उसने बताया इस खत के बारे में, ठीक है, कि अल्ला तालु अलैया, यानी इस किताब, ये जो मकतूब आया है मेरे पास, इसमें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, फिर उसके अंदर ये भी है कि मेरे ऊपर तुम जोर मत दिखाना। ठीक है ना, मेरे मेरे मुकाबले में मतलब अकड़ना मत। ठीक है, तालु, ऊंचाई इख्तियार ना करना मेरे सामने, अला यालू, ठीक है, जैसे ताला, अल्लाह ताला जो है वो बुलंद है, अल्लाह ताला, उसी उसी लफ्ज से ये तालू बनता है, तो मेरे सामने ऊंचा बनने की कोशिश ना करना। वातूनी मुस्लिमीन, बल्कि आ जाओ मेरे पास मुस्लिम बन करके। मुस्लिम, यहाँ पर मुस्लिम का जो लफ्ज है वो उसके लफ्जी मानी में इस्तेमाल हुआ, यानी अपने आप को सरेंडर करके, सरेंडर करके अपने आप को सुपुर्द करके मेरे पास आ जाओ, ठीक है, लड़ाई वड़ाई करने की नियत से मत आना हो ना, ठीक है, सरेंडर योर सेल्फ टू मी, ठीक है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको खत लिखा, ठीक है, मेरे पास सरेंडर होकर आ जाओ। और ये सरेंडर होने से क्या मुराद, अल्लाह के सामने सरेंडर होना, या सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कह रहे हैं मेरे सामने सरेंडर हो जाओ, उसको हम इसी तरीके से फिर समझेंगे कि मेरी मेरे हुक्म के सामने, मेरे इंस्ट्रक्शंस के सामने सरेंडर हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अपना नायब बनाया है दुनिया के अंदर, ठीक है, तो मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो दरअसल अल्लाह ही की इंस्ट्रक्शंस है, तो मेरे सामने सरेंडर होना ही दरअसल अल्लाह के सामने सरेंडर होना है, ठीक है ना। जैसे कि पीछे जो हमने सूरत पढ़ी थी उसके अंदर बार बार सूरह शुरा के अंदर ना, कि फत्तकुल्लाह वअतीउनी, अल्लाह से डरो लेकिन अतात मेरी करो, राइट। उसके ऊपर हम बहुत दफा हमने इसके ऊपर तफसील से बात करी है कि पैगंबर कहते हैं मेरी अतात करो, उसी तरीके से यहां पर पैगंबर कह रहे हैं मेरे सामने सरेंडर हो जाओ, ठीक है। तो अगर कोई आम आदमी कहेगा ये बात कि मेरे सामने सरेंडर हो जाओ, जिसके पीछे जो है वो अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह की तरफ से कोई सनद मिली हुई नहीं है, ऐसा बंदा कह रहा है मेरे सामने सरेंडर हो जाओ, तो इसको तकब्बुर से ताबीर किया जाएगा, ठीक है ना। इसको जो है वो, ये भी हो सकता है कि वो बंदा जो है वो ना सिर्फ ये कि तकब्बुर कर रहा है, बल्कि वो बंदा जो है वो नाउजुबिल्ला लोगों को अपने सामने झुकने का हुक्म दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन यही अल्फाज अगर किसी दीन के मुबल्लिग के मुंह से निकलेंगे तो उसको तकब्बुर से ताबीर नहीं किया जाएगा। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसको इतने कम टाइम में बयान भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हम करते रहते हैं कोशिश हर वक्त, ठीक है। कि देखें, अल्फाज जो है ना वो मत देखें, अल्फाज के ऊपर कहते हैं ना, अल्फाज के पीछे पढ़ना जो है ना, ये सही बात नहीं होती है, एक्चुअली बहुत इसके अंदर मिस्टेक्स हो जाती हैं। असल जो होता है ना वो अल्फाज कहने वाले को देखना होता है, अल्फाज कहने वाला इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अल्फाज अगर बिल्कुल क्लियर हो, कोई उसके अंदर जो है वो यानी मुशाबहत मुतशाबह ना हो, कोई उसके अंदर जो है वो कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल सिंपल प्योर ऐसे अल्फाज हैं, फिर तो चले चल जाता है मामला, अल्फाज को देखने से मामला चल जाता है, कोई मसला खड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इस किस्म के मिक्सअप किस्म के अल्फाज हों, ठीक है ना, या मिक्सअप किस्म का माहौल हो, जैसे कि आजकल दजल और फरेब का माहौल है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना, पूरी सराउंडिंग, पूरा जो फिजा है इस वक्त दजलो फरेब से मुअत्तर हुई भी है, ठीक है, बल्कि मुतअफ्फन हुई भी है, ताफुन फैला हुआ है दजल और फरेब का पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। इस दौर के अंदर तो और भी ज्यादा ये बात अहम बन जाती है कि डोंट गो आफ्टर द वर्ड्स, किसी के मुंह से अच्छी अच्छी कलमात, अच्छी अच्छी बातें, है ना, हत्ता के कुरान मजीद की आयात, हदीस मुबारका, राइट, और आजान की आवाज और तिलावत की आवाज, है ना, इनको सुन करके लट्टू मत हो जाया करो, ठीक है ना, इनको सुन करके हम बड़े बड़े वो भी होते भी हैं, तो उसके भी असर में कोई ना कोई रीजन ही होती है हमारे, है ना, रीजन होता है हम क्यों लट्टू हो जाते हैं किसी के ऊपर इतनी आसानी से, वो पहले से हुए होते हैं असल में, ठीक है ना, बाकी हमें बहाने चाहिए होते हैं लट्टू हो जाने के, ठीक है, तो हम जो है ना फिर वो बहाना क्या हो, कुरान की तिलावत इतनी अच्छी कर रहे हैं भाई, इतनी अच्छी अजानें हो रही हैं भाई, इतनी अच्छी जो है वो हदीसें सुना रहे हैं भाई, राइट, इतना अच्छा दीन का बात कर रहे हैं भाई, तो चलो लट्टू होने को जस्टिफाई कर देते हैं हम इस तरीके से, हमें एक सेल्फ जस्टिफिकेशन मिल जाती है, लट्टू होने का मतलब समझते हैं, निछावर हो जाना, निसार हो जाना, इसी को स्लैंग में बोलते हैं लट्टू हो जाना, ठीक है ना, समझ में आता है सबको, मसला तो नहीं है इस टर्म को समझने में, निछावर हो जाना, सदके वारी, वारी हो जाना, ठीक है। तो हम वारी हो जाने, तो हम पहले से वारी हुए भी होते हैं असल में, ठीक है ना। लेकिन हमें फिर एक जस्टिफिकेशन भी मिल जाती है, दीनी जस्टिफिकेशन। हम ये दीन की बातें कर रहे हैं भाई, तो हमारा वारी होना और जस्टिफाई हो गया ना, ठीक है ना। तो ज़य्यना लहुमुश शैतान, इसी को कहते हैं ज़य्यना लहुमुश शैतान। इस शैतान ने ना उनके वारी होना के असल वजूहात तो जो थी वो तो, असल वजूहात तो नफ्स परस्ती थी, असल वजूहात तो दुनिया परस्ती थी, लेकिन आगे से जब दीन 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 भी नजर आना शुरू हो गया, तो अब जो है ना वो दुनिया परस्ती जो है ना वो दीन की शक्ल में मुजयन हो गई भाई, मुजयन हो गई दीन। अब तो ये दीन की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो अब तो हमारा वारी हो जाना कंप्लीटली जस्टिफाइड हो गया, ठीक है ना। इसी को कहते हैं ज़य्यना लहुमुश शैतान, ठीक है। तो खुसूसन दजलो फरेब के जमाने के अंदर, डोंट गो आफ्टर द वर्ड्स, गो आफ्टर द पर्सन हु इज स्पीकिंग द वर्ड्स। उस बंदे को देखो उसका आगे पीछे क्या है मामला, ठीक है ना। उसका आगे पीछे क्या मामला है, उसकी जिंदगी कैसी है, उसका ताल्लुक कैसे लोगों के साथ है, उसका दूसरे मामलात के अंदर क्या अमल है, ठीक है ना। उसको कोई सनद हासिल है कि नहीं है, उसके साथ उलमाए कराम है कि नहीं है, ये सारी बातें देखो, ठीक है ना। आज हम ये नहीं कर रहे, इसी वजह से हर थोड़े दिन, बल्कि थोड़े दिन भी नहीं, हर अगले दिन ही शायद पता चलता है YouTube के ऊपर एक और साहब आ गए, है ना, और लोग सुनना शुरू हो गए। फलाने साहब ने आकर के जो है मुझे 2-3 दिन पहले एक साहब बोलने लगे, आपने सुना है उनको YouTube के ऊपर बड़े जबरदस्त प्रोग्राम होते हैं, और वो जो है ना वो उनकी बड़ी, उनका चैनल है और YouTube के ऊपर वो, मैंने कभी कौन है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना उनका, ठीक है। तो मुझे जो है वो दिखाने शुरू हो गए, ठीक है। अब वो साहब जो है वो पता नहीं कौन है, मैंने कभी नाम नहीं वाकई उनका सुना था, उनकी वीडियो देखो तो वो ऐसे लश्कारे उसके अंदर, ऐसे जबरदस्त किस्म की ग्राफिक्स और ऐसा सारी चीजें, और वो बैठ करके क्या क्या उनके लेक्चर्स क्या चल रहा है, सीरीज क्रिएशन ऑफ मैन, इंसान की तखलीक कैसे हुई, जिन्नों की तखलीक कैसे हुई, और ये जो है वो फरिश्ते जो है वो क्या हैं, और जो है वो हमजात क्या होता है, और ये जो जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के जो मसले मसाइल उन्होंने आकर के दागना शुरू कर दिए यूट्यूब के ऊपर, और फॉलोइंग बन गई, है ना। ही हैज अ फॉलोइंग, लोग जो है वो खुद भी सुन रहे हैं और दूसरों को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट। और वो साहब मुझसे आके पूछ रहे हैं, है ना, हम फकीरों ने बड़े बयान भेजे, वो तो उनके पास टाइम नहीं होता सुनने का, ठीक है ना, क्योंकि फकीरों को कौन घास डालता है, ठीक है ना। लेकिन लश्करों के साथ जो माशाल्लाह यूट्यूब चैनल बना करके आएंगे, तो उनको तो फिर डालना पड़ेगा ना भाई, लश्करों के तो फिर हम वैसे भी डट्टू हो जाते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो यानी क्या ये कहानियां, जो आ जाए कहीं कोई कनाडा से पलट के आ रहा है तो उसने जो है वो शुरू कर दिया, है ना, अब उसके ऊपर हजारों लोग जो है वो उनके फॉलोअर्स बन गए, ठीक है ना। क्योंकि हम बस, है ना, हमें आगे पीछे देखने का हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। ये सनद क्या चीज होती है, ये ताल्लुक क्या चीज होती है, उलमाए कराम क्या चीज होते हैं, उनको तो हमने कुछ समझा ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इस वजह से उनकी वेरिफिकेशन की क्या जरूरत है, ठीक है ना। उनके साथ कनेक्शन की हमें क्या 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 इंपॉर्टेंस है हमारे हमारी निगाहों में। तो अब जो है ना वो हर हमारे लिहाज से अच्छा बोलने वाला बंदा जो यूट्यूब के ऊपर हमें नजर आता है, हम लग जाते हैं उसको सुनने में, ठीक है। तो ये भाई, ये इससे फिर ना ईमान खत्म हो जाता है, आप इस किस्म की बातों को सुन करके उनकी वाह वाह करना शुरू हो जाए, पता चला उसने जो है वो अकीदे के खिलाफ कोई बात करनी शुरू कर दी, आपने उसकी भी वाह वाह शुरू कर दी, आपको कुछ पता ही नहीं था, राइट। तो आपने तो अपना ईमान ही खत्म कर दिया ना इस तरीके से, ठीक है। टू मच इंफॉर्मेशन डेटा अवेलेबल, इफ एनी वन नोज द आर्ट टू मैनिपुलेट दे बिकम इस्लामिक और मोटिवेशनल स्पीकर, एग्जैक्टली, ठीक है ना। जिसको बोलना आता हो और लोगों को अपनी जुबान के जरिए से घुमाना आता हो, तो वो इस्लामिक स्पीकर बन जाता है या मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है ना। और वो एक टेड टॉक जो है वो पूरा पूरा उन्होंने एक सिस्टम भी बनाया हुआ है जिसके ऊपर हर किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है ना, वो दीन के स्पीकर भी आ जाते हैं उसके अंदर, दुनिया के स्पीकर भी आ जाते हैं, तो कॉर्पोरेट स्पीकर भी आ जाते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बोलने वाले भी आ जाते हैं, तो हर सिस्टम के ऊपर बोलने वाले, और हमारे हम हर एक को सुन रहे हैं, ना आगे देखा ना पीछे देखा, ठीक है। तो अब इस गुमराही के जिम्मेदार जो है ना, जो इसके नतीजे में हमारे अंदर है और फैल रही है, ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे, तो इसके जिम्मेदार हम सिर्फ खुद हैं, और कोई और किसी और को हम इसका, हम यूट्यूब स्पीकर्स को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो हाथ पकड़ के हमें नहीं बिठाते अपने सामने, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा मौका नहीं आया कि YouTube से हाथ निकल रहा है, वो पकड़ करके हमें जो है ना वो अपने सामने बिठा रहे हो, सुनो तो मुझे, ऐसा कोई नहीं है अल्लाह का शुक्र है अभी तक। ठीक है, कल को ये भी अल्लाह पता नहीं कल ये भी कहीं ना शुरू हो जाए मेटा के जरिए से। ठीक है, बहरहाल तो आगे फरमाते हैं कि आतूनी मुस्लिमी, है ना, सुपुर्द करके अपने आप को मेरे सामने हाजिर हो जाओ। ठीक है, कालत या अय्युहल मलाउ अफ्तूनी फी अमरी। अब ये जो मलका थी, मलका सबा, तो इसने भी बड़ी जबरदस्त बात करी कि ए सरदारों, या अय्युहल मलाउ अफ्तूनी फी अमरी, मुझे मेरे मामले में, अमरी से मुराद मेरा मामला, ठीक है, ये जो मामला मुझे पेश आ गया है ना, एक लेटर आ गया है मेरे पास सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से, तो अब अफ्तूनी, मुझे फतवा दो इसके बारे में। यहाँ पर फतवा दो से मुराद जो है वो मशवरा दो, ठीक है, यानी कोई रिलीजियस डिक्री नहीं मांग रही है, जैसे हम मुफ्ती साहब से फतवा मांगते हैं तो वो हम मुफ्ती साहब से मशवरा नहीं मांग रहे होते, मुफ्ती साहब वहां पे मशवरे देने के लिए नहीं बैठे हुए दारुल इफ्ता के अंदर, ये उनका टाइम का सही इस्तेमाल नहीं है कि हम उससे जाके मशवरे मांगे, हम उससे फतवा मांगते हैं कि हमें ये बताइए कि अल्लाह ताला का दीन क्या कहता है इस मामले में। ठीक है, लेकिन यहां पर वो अल्लाह के दीन का फतवा नहीं मांग रही, बल्कि वो क्या मांग रही है, मशवरा मांग रही है। ठीक है, तो ये इस मायने में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है अरबी जुबान का। मा कुंतु काति'अतन अमरन हत्ता तशहदून, मैं नहीं हूं काति'अतन अमरन, यानी अपने अमर में, अपने मामले में कोई कतई फैसला करने वाली, कातिउन कातिअतुन, क्योंकि औरत थी ना तो फीमेल टेंस इस्तेमाल होगा, तो कातिअतुन यानी कतई फैसला करने वाली अपने अमर में, हत्ता तशहदून, हत्ता के तुम लोग मौजूद ना हो, यानी अनटिल एंड अनलेस यू आर पार्ट ऑफ इट टू, ठीक है, यानी तुम्हारा मशवरा उसके अंदर शामिल ना हो, तुम्हारी एडवाइस उसके अंदर शामिल ना हो। टाइम चूंकि खत्म हो गया क्लास का, तो इस वजह से इंशाल्लाह बाकी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। वा आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह।